जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन शारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, Thank you. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Jaya Radha Shyam Sundara, Radha Shyam Sundara Radhe. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jai Om Vishnupad, Paramahansa Paribrajaka Acharya, Ashtotar Sat Sri Srimad Eshi Bhakti Vedan Swami Srila Prabhupad Ki, Iskan Sanstapka Acharya Srila Prabhupad Ki, Anant Koti Vaishnava Vrinda Ki, Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki, Sri Sri Krishna Balaram Ki, Sri Sri Radha Shyam Sundar Ki, Sri Sri Nitai Gaur Sundar Ki, Samvet Bhakta Vrinda Ki, Sri Sri Guru M. Gauranga Ki. Om Ajnanti Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindha Dena Bandha Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya नाम ने गौर तुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले सोऽयम् रूपः कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के 14वें अध्याय का 35 नंबर का श्लोक 35, आदर्श पारिवारिक जीवन। श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 14 श्लोक 35। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव ऋषि अरहत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मा आत्मजादिषु राजन् यत् अग्रपूजायां मतः पात्रतया अच्युतः। देवर्षर हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन् यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः। देवर्षर्हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन् यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः। देवर्षर्हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन् यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः। माता जी देव ऋषि देवताओं तथा महान सर्पुरुषों में से जिनमें श्री नारद मुनि आते हैं, अरहत्सु अत्यंत आदरणीय तथा पूजनीय व्यक्ति वही निसंदेह सत्सु महान भक्तों में से तत्र वहां राजसूय यज्ञ में ब्रह्म आत्मजादिषु तथा ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन सनत तथा सनातन राजन हे राजा यत जिससे अग्र पूजाया जिसकी पूजा सबसे पहली होनी हो मतः निर्णय पात्रतया राजसूय यज्ञ की अध्यक्षता हेतु चुना गया सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अच्युत भगवान श्री कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, हे राजा युधिष्ठिर, तुम्हारे राजसूय यज्ञोत्सव में मेरे साथ साथ देवता अनेक महामुनि तथा साधुओं के अतिरिक्त ब्रह्मा जी के चारों पुत्र उपस्थित थे, किंतु जब यह प्रश्न उठा कि किस व्यक्ति की सर्वप्रथम पूजा की जाए तो सबने परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को ही चुना। तात्पर्य, यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए हुए राजसूय यज्ञ का संदर्भ आया है। उस सभा में सर्वप्रथम पूजित होने वाले व्यक्ति के चुनाव को लेकर बहुत उथल पुथल हुई थी। सबने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का निश्चय किया। एकमात्र विरोध शिशुपाल की ओर से था, और उसके भयंकर विरोध के कारण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उसका वध कर दिया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग गृहस्थ धर्म के विषय में श्रवण कर रहे हैं। पहले विरक्तों के धर्म का निरूपण किया जा चुका है। चार आश्रम है, इसको दो खंड में बांटे तो एक को विरक्त एक को गृहस्थ कहते हैं। या कुछ लोग निवृत्ति मार्ग में है, कुछ लोग प्रवृत्ति मार्ग में है। और पहले आप सुन चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर दोबारा प्रश्न किए। एक क्रम के अनुसार उनको लगा कि नारद जी गृहस्थों की उपेक्षा कर रहे हैं। उनके मन में संशय हो गया कि लगता है कि इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन नारद जी को गृहस्थों के धर्म का निरूपण करना ही था। वे वानप्रस्थी और सन्यासियों के धर्म का निरूपण इसलिए कर दिए क्योंकि ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और सन्यासी ये तीनों निवृत्ति मार्ग के अनुयायी हैं। पर इस तरह से वे गृहस्थों का वर्णन लास्ट में करना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को घबराहट हो गई, फिर से प्रश्न कर दिए। प्रश्न उनका है कि हमारे जैसा मूढ़ व्यक्ति गृहस्थी में रह करके भी आसानी से सन्यासियों के पद को, सन्यासियों के गति को प्राप्त कर ले, इसका उपाय बतलाइए। नारद जी कई एक उपदेश दे रहे, आप लोग उन उपदेशों को सुन चुके हैं, अब फिर से उसको कहने में समय लगेगा, मूल विषय छूट जाएगा, इसलिए आप अपने से याद कर लीजिए कि क्या क्या नारद जी बोले हैं। अपने कर्म को भगवान को अर्पित करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, उनसे कथा सुननी चाहिए और उसी क्रम में कह रहे हैं कि गृहस्थ का धर्म है कि एक एक प्राणी का ध्यान रखे, जैसे अपने पुत्र पुत्री का ध्यान रखता है, और वैसे एक एक प्राणी के एक एक प्राणी का ध्यान रखे और रोज उसको यज्ञ करना चाहिए। लेकिन कोई कोई विशेष अवसर आता है तो उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। कोई कोई ऐसा समय आ जाता है, ऐसी तिथि आ जाती है, ऐसा मुहूर्त होता है कि उस समय धार्मिक अनुष्ठान करने से बहुत अधिक लाभ हो जाता है, तो उस तिथि का लाभ जरूर लेना चाहिए। कई एक तिथि का लिफ्ट दिया गया, जैसे संक्रांति का समय है, व्यतिपात है, नवमी है, मतलब अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, और इन सब है तिथियों का लाभ जरूर लेना चाहिए। लाभ लेने का अर्थ है कि उस समय जप यज्ञ दान जरूर करना चाहिए, उस समय करते हैं तो उसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। और इसके साथ ही पुण्य क्षेत्र का सेवन करना चाहिए, पवित्र स्थान का सेवन करना चाहिए, और पवित्र स्थान में यज्ञ करने से, जप करने से, दान देने से या और भी अनुष्ठान करने से उसका बहुत अधिक लाभ होता है। तो लिस्ट भी दिया गया है कि कौन कौन पुण्य क्षेत्र है। कई एक श्लोक में, तीन श्लोक में लिस्ट प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कोई पवित्र क्षेत्र है तो उसका एक सिद्धांत है। सिद्धांत यह है कि जहां सतपात्र सुलभ हो तो वही पुण्य क्षेत्र है। सवय पुण्यतमो देश सत्पात्रम यत्र लभ्यते। पुण्य देश का अर्थ है कि जहां सत्पात्र सुलभ हो। अब फिर एक समस्या खड़ी होगी कि सतपात्र का क्या मतलब है। भाई कोई अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो दान देंगे, तो किसको दान देंगे? तो जहां दान देने लायक पात्र सुलभ हो तो वही सबसे अच्छा जगह है, वही पुण्यतम देश है। अब कौन वह देश है इसका कुछ परिचय चाहिए। तो बिंबम भगवतो यत्र सर्वमेतत् चराचरम यत्र ब्राह्मण कुलम तपो विद्या दयान्वितम। कि जहां भगवान का बिंब है, भगवतः बिंबम सर्वमेतत् चराचरम, और जहां ब्राह्मणों का समुदाय है जो तपस्या विद्या और दया से युक्त हैं, और यत्र यत्र हरिरर्चा जहां भगवान का मंदिर है, सदेश श्रेयसाम पदम, तो वह क्षेत्र कल्याण के लिए बहुत अच्छा है। या जहां जहां गंगा इत्यादि नदियां हैं जिनका वर्णन पुराणों में किया गया है, वे नदी हैं या पवित्र सरोवर हैं, तो उस स्थान को पुण्य देश माना गया। तो ऐसे स्थान का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि अब उस स्थान में कोई अनुष्ठान करते हैं, खास करके कुछ अर्पित करते हैं, दान देते हैं, तो वहां सतपात्र प्राप्त हो जाएंगे। तो सतपात्र प्राप्त हैं, और सतपात्र में भी कई एक सतपात्र हैं। जैसे यहां दिया गया है बिंबम भगवतो यत्र सर्वमेतत् चराचरम, जहां भगवान के बिंब सुलभ, भगवान के बिंब, बिंब मतलब प्रतिमूर्ति कहते हैं, मूर्ति। और कह रहे हैं कि सर्व में तो चराचरम, अब भगवान जहां हैं तो उनके अंदर ही सब हैं। तो ऐसा श्लोक है कि इसका अन्वय दो ढंग से किया जा सकता है। यत्र सर्वमेतत् चराचरम भगवतः बिंबम, सर्वमेतत् चराचरम जहां चर अचर सब हो, तो ये भगवान की विशेषता है। या भगवतः बिंबम सर्वमेतत् चराचरम, यह भगवान के बिंब का, बिंब मतलब रूप, मूर्ति, छाया। डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे वो छाया लिखा गया है या रूप लिखा गया है। तो यह बात तो समझ में आ रही है कि भगवान के अंतर्गत सारे जीव हैं, भगवान के गर्भ में सारे प्राणी हैं, लेकिन भगवतः बिंबम भगवान के जो रूप है, भगवान के रूप है वैष्णव। तो वैष्णव के अंतर्गत अब सारा जगत है, इस बात को कैसे समझा जाए। वैष्णव के अंतर्गत ही सारा जगत है, इसको कैसे समझा जाए। इस विषय में जानना चाहिए कि यतिर जस्य गृहे भुंक्ते तत्र भुंक्ते हरि स्वयं। एक बड़ा ही प्रसिद्ध उक्ति है कि जिसके घर में कोई सन्यासी भोजन किया, सन्यासी के भोजन करने का मतलब है कि स्वयं भगवान ही वहां भोजन कर रहे हैं, और जहां भगवान भोजन कर रहे हैं तत्र भुंक्ते जगत त्रयम्। तो सारा संसार ही भोजन कर लिया, भोग कर लिया। तो इस तरह से वैष्णव बिंब का भी विशेषण सर्व में तक चराचरम। और यत्र ब्राह्मण कुलम तपो विद्या दयान्विता, जहां ब्राह्मण समुदाय है जो तपस्या विद्या और दया से युक्त है, या जहां भगवान के मंदिर है, श्री विग्रह है, तो यह स्थान बहुत अच्छा है। और जहां गंगा इत्यादि नदियां हैं, तो कईये के सतपात्र का उल्लेख किया जा रहा है। लेकिन अब प्रश्न होगा कि भाई इसमें तारतम्य क्या है। सतपात्र तो वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, और भी जीव समुदाय है, लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। आप कई एक जगह पढ़ेंगे तो लिखा गया, भगवान ही बोले हैं कि हमारे इस रूप से अधिक प्रिय ब्राह्मण हैं। यद्यपि हमारा रूप सर्वदेवमय बपु, सर्वदेवमय है, लेकिन इस रूप से भी अधिक प्रिय ब्राह्मण है, क्योंकि वे सर्ववेदमय है। और इसका अलग फिलॉसफी है, और आप पढ़ते ही रहते हैं कि भगवान से भी, भगवान की पूजा से भी श्रेष्ठ वैष्णव की पूजा। तस्मात् परतरम देवी, तो वैष्णवा नाम समर्चनम, ऐसे कुछ है। लेकिन भाई तारतम्य स्थापित किया जाए तो जो विद्वान है, जो सतपात्र के निरूपण करने में एक्सपर्ट है, पात्र वित्तमय कभी भी और तरह से विद्वान है, तो पात्रम त्वत्र निरुक्तम हुए। वे लोग दान के पात्र का या पूजा के पात्र का निरूपण किए हैं। वे कौन पात्र है, तो हरि एव एक उर्विंश, हे पृथ्वीपति सबसे ऊपर के सतपात्र हरि एव भगवान ही हैं। वे क्यों भगवान सबसे उत्तम पात्र हैं, कि यन्मयम वै चराचरम, क्योंकि भगवान के अंदर ही ये सारा संसार है, भगवान से बाहर कोई नहीं है। और इसलिए कुछ अर्पित करना है, कुछ देना है, तो सबसे ऊपर स्थान भगवान का, हरि को ही स्थापित किया गया। अब कोई कह सकता है कि भाई दूसरी बात भी है, वैष्णव ब्राह्मण, या यह भी कहा जाता है कि जितना दूसरे जीवों पर दया करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उतना प्रसन्न यज्ञ करने से नहीं होते। ब्रह्मा जी खुद ही श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं कि नाति प्रसिद्धति तथोपचितोपचारय आराधितः तथोपचितोपचार है। किसी के मन में कामना है कि हमारा नाम हो जाए, जस हो जाए, और खूब अच्छा अच्छा सामग्री जुटा करके भगवान की आराधना करता है, वो भगवान जरूर उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन यत सर्वभूत दया, जितना दूसरे प्राणियों पर दया करने से प्रसन्न होते हैं उतना प्रसन्न नहीं होते। अब एक है, विवाद खड़ा होगा कि कौन श्रेष्ठ है, किसको दिया जाए। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि जो निर्णय करने में दक्ष है, पात्र वित्तमहि, जो पात्रता के सिद्धांत को जानते हैं, विद्वान हैं, तो वे निर्णय किए हैं कि सबसे बड़े पात्र भगवान। किसी को कुछ देना है तो देने के लिए सबसे बड़े सत्पात्र हैं भगवान। इस विषय में कोई विवाद नहीं है। और प्रमाण के तौर पर अब एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं, वही हम लोगों के आज का प्रवचन का विषय है। तो राजसूय यज्ञ का उल्लेख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजन यद अग्र पूजाया मतः पात्रतया च्युतः। उस घटना का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें महाराज युधिष्ठिर भी थे और नारद जी भी थे। कोई अपरोक्ष की बात नहीं है, प्रत्यक्ष दोनों दर्शन किए हैं, दोनों के अनुभव का विषय है। तो कह रहे हैं कि देव ऋषि अरहत्सु व सत्सु तत्र ब्रह्मात्म जादिसु। राजसूय यज्ञ का आयोजन किए महाराज परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर, राजसूय यज्ञ। एक बार सभा में स्थित थे भगवान, उन्हीं के सामने महाराज युधिष्ठिर प्रस्ताव रखे। महाराज युधिष्ठिर के मन में ये बार बार विचार आ रहा था कि हमारे पास इतना धन है, राजकोष भरा हुआ है, तो इसका उपयोग करना चाहिए और ये स्थापित करना चाहिए कि सबसे बड़ा स्थान भगवान विष्णु के भक्तों का। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज युधिष्ठिर को इतना बड़ा आयोजन करने की क्या आवश्यकता थी, और उनके परिवार में भी कभी कभी विवाद होता था, परिवार मतलब बृहद परिवार में, उनके समाज में, कि भाई शिव जी का भक्त श्रेष्ठ है कि विष्णु भगवान का। आज भी विवाद होता है कि भाई धन चाहिए तो शिव जी की भक्ति करनी चाहिए, शिव जी धन देते। लेकिन महाराज परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर स्थापित करना चाहते थे कि किसी भी दृष्टि से भगवान विष्णु के भक्त का स्थान सर्वोपरि है, इसलिए खूब बड़ा आयोजन किए राजसूय यज्ञ। और भगवान सभा में बैठे थे उस दिन, वे महसूस किए कि हमारे भाई लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं और बड़े बड़े सेठ भी उपस्थित हैं, तो आज उपयुक्त अवसर है, आज प्रस्ताव रखूं। तो सभा में प्रस्ताव रखे कि हे ब्रह्मन, हे भगवान, हम आपका यजन करना चाहते, क्रतु राजेन, जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है उससे। मानो भगवान कहे कि क्या तुम्हारे मन में आ रहा है, समझ रहे हो राजसूय यज्ञ करने का क्या मतलब है कि सब दिशाओं पर विजय प्राप्त करना होगा, बहुत धन की आवश्यकता होती है, और इतना बड़ा मनोरथ कैसे कर रहे हो। और महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, तत्पादुके अविरतम परिजे चरंति ध्यायंत भद्र नसने सुचयो गृणंति बिंदंति ते कमलनाभ भवाप वर्गम आशा सते आशीष ईश नान्य। सिद्धांत दे रहे हैं कि हे भगवान, जो शुद्धात्मा, जो पवित्रात्मा आपके चरण जुगल की आराधना करता है, निरंतर उसके आराधना में लगा हुआ है, आपका गुणगान करता है, तो उसका स्वाभाविक फल होता है बिंदंत ते कमल न भवापवर्ग, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वाभाविक फल है कि मोक्ष को प्राप्त करता है। और आशा सत्य, यदि यदि उसके मन में कोई कामना है तो उस कामना को वही प्राप्त करता है, न अन्य। जो आपकी आराधना नहीं करता है तो उसको कामना की पूर्ति नहीं होती है। तो भगवान के भक्ति का महत्व है कि स्वाभाविक रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन किसी किसी को अभी तो मोक्ष में रुचि नहीं है, अभी तो उनको सांसारिक समृद्धि चाहिए, सांसारिक सफलता चाहिए, तो कह रहे हैं कि वह भी भगवान के अर्चना से ही प्राप्त होती है। जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे तब तक सांसारिक सफलता भी नहीं प्राप्त होगी। और अस्पष्ट उदाहरण है, आप अष्टम स्कंध में पढ़ते हैं समुद्र मंथन किया गया, तो समुद्र मंथन करने में दो पक्ष था, देवताओं का और दैत्यों का। एक जगह पर उपक्रम चालू किया गया, संसाधन सब एक थे, उद्देश्य एक था, समय एक था, लेकिन फल विकल्प अंतर हो गया। तो अंतर करने वाला कारक क्या था? देवता लोग छक करके अमृत पान किए और दैत्यों को एक बूंद भी नहीं मिला, ये अंतर कहां से हो गया? यत्पाद पंकज रज श्रेणा, देवताओं को जो सफलता मिली उसके पीछे कारण है कि वे भगवान के चरणों के आश्रित थे और न दैत्य। दैत्य लोग भगवान के आश्रय नहीं लिए थे, इसलिए फल में बहुत भारी विकल्प हो गया, अंतर हो गया। और महाराज युधिष्ठिर सिद्धांत दे रहे हैं कि संसारिक सफलता भी आपके चरणों के आश्रय से ही मिलता है। जो आपके चरणों के आश्रय नहीं लेते हैं और उनको संसारिक सफलता भी नहीं मिलती। और जब ऐसे प्रस्ताव रखे तो भगवान कहे कि इसमें क्या दिक्कत है, तुम करो। और मानो कोई कह सकता था कि एक दो दिक्कत लग रही है, वो जरा संध पर विजय प्राप्त करना होगा, वो कुछ कठिन लग रहा है। भगवान सिद्धांत दे के हमारे जो भक्त हैं वो देवता भी उसको पराभूत नहीं कर सकते। सबसे ऊपर स्थान हमारे भक्त का होता है, किसी क्षेत्र में, जस के दृष्टि से, धन के दृष्टि से, पौरुष के दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से हमारे भक्तों का स्थान सबसे ऊपर होता है। तो महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ किए यह स्थापना के लिए कि भगवान के भक्तों का स्थान सबसे ऊपर किसी भी दृष्टि से। और यज्ञ चल रहा था और उसमें एक कृत्य है पूजा की, सबकी पूजा करनी होती है, तो भाई सबसे पहले किसकी पूजा किया जाए? जब यह प्रश्न आया तो प्रस्ताव रखा गया कि भगवान सबसे श्रेष्ठ है, कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, सब दृष्टि से श्रेष्ठ है, तो इनकी पूजा सबसे पहली होनी चाहिए। और जब यह प्रस्ताव रखा गया तो सब लोग समर्थन किए, एक व्यक्ति केवल विरोध किया, तो वह भी अपने व्यक्तिगत द्वेष के चलते विरोध कर रहा था। भगवान उसका विवाह नहीं होने दिए थे, बारात लेकर के गया था और खाली लौट आया तो उसको बड़ा क्रोध था, वो अनाप शनाप बोलने लगा, ऐसे पहले से भी भगवान का विरोधी ही था। वो एक व्यक्ति केवल विरोध किया, वहां सब लोग उपस्थित थे, देवता थे, ये ब्रह्म आत्म जादिसु, एक अर्थ है कि ब्रह्मा के पुत्र थे ये सनकादि। अब इनसे बड़ा तपस्वी तो कोई नहीं है, सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं, वे ब्रह्मचर्य के पालन के लिए चार पांच साल के अवस्था को धारण किए। अब चार पांच साल का जो उम्र में उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बिल्कुल आसान है, यद्यपि वे शिव जी के भी अग्रज हैं, ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र हैं, या दूसरे ढंग से अर्थ करेंगे कि देवताओं में सबसे जो बड़े पद पर हैं, ब्रह्मा जी उपस्थित थे और उनके पुत्र भी उपस्थित थे और देवता लोग उपस्थित थे, सब ऋषि लोग उपस्थित थे, सब लोग उस समाज में आए थे और उस समाज में अग्र पूजा किया गया श्री कृष्ण का। तो इससे स्थापित है कि सबसे सतपात्र, सबसे ऊंचा सतपात्र श्री कृष्ण है। जहां कुछ देने की बात है, अर्पित करने की बात है, तो सबसे ऊपर स्थान भगवान का, और इस विषय में कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आगे समस्या आएगी कि भगवान सुलभ न हो तब, तो इसका भी समाधान दिया गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि कह रहे हैं कि अग्र पूजायाम पात्रतया अच्युतः मतः, अग्र पूजा के लिए एक मत से निर्णय लिया गया भगवान अच्युत के विषय में। अच्युत, वे गुण से च्युत नहीं होते हैं और वय से च्युत नहीं होते, स्वरूप से च्युत नहीं होते, भगवान अच्युत हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ देर तक उनमें कुछ गुण है और बाद में खत्म हो जाए, उनका गुण कभी खत्म नहीं होता, उनका रूप कभी खत्म नहीं होता या उनका पोजीशन कभी खत्म नहीं होता है, वे सब दृष्टि से अच्युत हैं और इसलिए उन्हीं को चुना गया। तो वे ही दान के पात्र हैं। इसी से भगवान गीता में कहते हैं कि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। कैसे शुरू का, यत् करोषि यदस्नासि, जो कर रहे हो, जो खा रहे हो, यत् ददासि, जो दे रहे हो, ये तपस्या कर रहे हो, सब मुझको अर्पित कीजिए। तो अर्पण के प्रथम पात्र है भगवान। लेकिन अभी राजसूय यज्ञ में तो भगवान उपस्थित थे, तो सब जगह तो उपस्थित नहीं रहते हैं, अवतार ग्रहण किए हैं और तो प्रकट यहाँ विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबके लिए तो सुलभ नहीं है। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में तो सुलभ हुए, महाराज बलि के यज्ञ में खुद ही पहुंच गए, अक्रूर जी उनको अपने घर ले गए। लेकिन अब ऐसा सौलभ्य नहीं है, ऐसा अवसर नहीं है, और उसका भी तारतम्य दिया गया। प्रथम स्थान भगवान का है क्योंकि उनके अंदर ही सारा संसार है और वे सबके मूल हैं। भगवान को तृप्त कर देने का अर्थ है कि सब तृप्त हो गया। अब भगवान डायरेक्ट नहीं सुलभ है तो बिंबम भगवतः यत्र, एक तो भगवान साक्षात रूप से हैं और जहां साक्षात रूप से नहीं है तो अपने दूसरे रूप से भी हैं। ये जो भक्त हैं या भी भगवान के एक रूप ही हैं। आप नलकुबर की स्तुति पढ़ते हैं तो वे प्रार्थना कर रहे हैं कि बाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया, वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मणिग्रीव और नलकुबर की, हमारी बाणी आपके गुण के कथन में लगे, हमारे कान आपकी कथा के श्रवण में, हाथ आपके कर्म में और मन आपके चरणों के स्मरण में, और हमारा सिर निवास जगत प्रणाम में, सारे संसार को प्रणाम करने में, क्योंकि सारा संसार आपका निवास है। और दृष्टि शतम दर्शनेस्तु भवत तनुना, और कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि शतम दर्शने संतों के दर्शन में, और भवत तनुना और आपके श्री विग्रह के दर्शन में। लेकिन एक अर्थ किया गया है कि दृष्टि भवत तनुना शतम दर्शने अस्तु, हमारी दृष्टि आपके जो रूप हैं, आपके विग्रह हैं, तो संतों के दर्शन में लगे। तो संतों को भगवान का एक रूप ही कहा गया, लेकिन यह चीज ध्यान रखना चाहिए कि भगवान तो सबके भीतर हैं, तो संतों को उनका रूप क्यों कह दिया गया। कोई भी प्राणी है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके अंदर भगवान है, तो सब भगवान के ही बिंब हैं, मंदिर हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि सिद्धांत बिल्कुल सही है, एक एक प्राणी में भगवान का निवास है, और सामर्थ्य है तो एक एक प्राणी को संतुष्ट करना चाहिए। वे भगवान के मंदिर जैसा है, लेकिन मंदिर होते हुए भी, सब जगह निवास होते हुए भी, भगवान के प्रकाशन में अंतर होता है। सब जगह एक जैसा प्रकाशित नहीं होते, परमात्मा रूप से सब जगह है, लेकिन परमात्मा का व्यवहार न्यूट्रल होता है। कोई दुख भोग रहा है, सुख भोग रहा है, उनको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन भक्तों के हृदय में ज्यादा प्रकाशित रहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके भावना के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, और भक्त लोगों का उनका स्पष्ट अनुभव होता है। भगवान तो हृदय में है, लेकिन जो घर गृहस्थी में पड़े हुए हैं, अहम मम में पड़े हुए हैं, तो सुदूरम, भगवान बहुत दूर रहते हैं, कभी अनुभव ही नहीं होता है। लेकिन जो भगवान के उन्नत भक्त हैं, खास करके ज्ञान और तपस्या से युक्त हैं, तो उनके हृदय में भगवान प्रकाशित रहते हैं, और इसलिए वैष्णवों को भगवान का एक रूप ही माना गया है। और इसलिए अब जहां भगवान सीधे सुलभ नहीं है, तो वैष्णव को देना चाहिए, ब्राह्मण को देना चाहिए, और सारे प्राणियों को देना चाहिए। तो यह एक तारतम्य स्थापित किया जा रहा है, और कई एक श्लोक में इस तारतम्य को स्थापित किए हैं, जिसको आप लोग धीरे धीरे सुनते रहेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो वैष्णव है तो भगवान के बिंब है, और डीटी भगवान का प्रतिबिंब है, और डीटी और वैष्णव में थोड़ा वैष्णव का स्थान कुछ ऊपर ही आ जाता है। लेकिन अब वैष्णवों में भी जो ज्ञानी हैं और तपस्वी हैं, तो उनका स्थान ऊपर होता है, क्योंकि ये सब है गुण है जिससे भगवान अधिक प्रकाशित होते हैं। और किसी को कुछ देना है तो उसके विषय में लिखा गया है कि न विद्या केवल या तपसा वापि पात्रता, केवल विद्या के चलते कोई सतपात्र नहीं है, देने योग्य नहीं है, और न केवल तपस्या के चलते। वृतम इमे चोभे तद विधि पात्र प्रकृतितम, जिस ब्राह्मण में, जिस वैष्णव में तपस्या भी है और विद्या भी है, तो उनको सत्रपात्र माना गया, और उनको कुछ देना बहुत लाभप्रद होता है। तो इस तरह अभी जो क्रम चल रहा है, उसमें सत्पात्र के तारतम्य का, हायरार्की का निरूपण किया जा रहा है। हम लोगों के श्लोक में स्थापित किया गया कि सबसे ऊंचा सत्पात्र भगवान है, और इसका प्रमाण दे रहे हैं कि राजसूय यज्ञ में सब लोग उपस्थित थे, लेकिन भगवान की पूजा की गई। और कैसे सत्पात्र हैं, इसको आगे के श्लोकों में स्थापित किया गया है, उसको हम लोग आगे सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न और प्रसाद दोनों का ऑप्शन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।